नमस्कार भारत, तारीख 10 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ट्रंप के जीतने के बाद हिलरी क्लिंटन ने अपने समर्थकों से माफी मांगी, कहा कि वो चुनाव नहीं जीत सकी, जो है बेहद दर्दनाक।
दिस इज नॉट द आउटकम वी वांटेड और वी वर्क्ड सो हार्ड फॉर एंड आई एम सॉरी दैट वी डिड नॉट विन।
अब जबकि ट्रंप जीत चुके हैं तो क्या उनके कथित मुस्लिम विरोधी बयान भविष्य की रणनीति बनेंगे?
मुसलमानों के कम्युनिटी के तो ना वो अगेंस्ट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं हो सकता है। तो वो तो ये एक लिबरल मीडिया ने इसको ट्विस्ट कर दिया, डिफरेंट कलर दे दिया, दैट्स अनदर थिंग।
ओबामा को उम्मीद, अमरीका को एकजुट रखेंगे ट्रंप। 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध के बाद भारत में आज खुलेंगे बैंक, लोग बदलेंगे नोट। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के हित सबसे ऊपर रखना उनकी प्राथमिकता होगी, लेकिन साथ ही सभी देशों से संबंध बेहतर करने पर भी उनका जोर होगा। उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी हिलरी क्लिंटन की भी तारीफ की और कहा कि विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने अमेरिका की काफ़ी सेवा की। वहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उम्मीद जताई कि ट्रंप अपने नेतृत्व से अमेरिका को एकजुट रखेंगे। हिलरी क्लिंटन ने हार के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये हार उनके लिए दर्दनाक रही, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से ये अपील भी की कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नेतृत्व का मौका ज़रूर दें। वहीं अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेन्या नियातो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भी अमेरिका और मैक्सिको के बीच आपसी विश्वास बहाल रहेगा और दोनों देशों की दोस्ती मजबूत होगी। अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की बात कही थी, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ट्रंप अगर जीतते हैं तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। हालांकि ट्रंप की जीत से मैक्सिको के आम लोग ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। उन्होंने जीत के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, फिलहाल दोनों देशों के रिश्तों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप की जीत के साथ ही हमारा शेयर बाजार गिरा, जिससे समझा जा सकता है कि उनका हमारे रिश्तों पर क्या असर होगा। ट्रंप की जीत के बाद अब ये निश्चित हो गया है कि मैक्सिको को खुद ही अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। ये थे ट्रंप की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मैक्सिको के कुछ आम नागरिक। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चिकित्सा अधिकारियों ने आगाह किया है कि पश्चिमी अफ्रीका में एक बार फिर से इबोला फैल सकता है। सेनेगल में एक सम्मेलन में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के इन चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो गिनी, लाइबेरिया और सियेरा लियोन में इबोला भयानक तरीके से दोबारा फैल सकता है। ये तीनों देश इबोला से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। जांचकर्ता ये पता लगाने में जुटे हैं कि इबोला का संक्रमण कैसे होता है, ताकि इस वायरस को ख़त्म किया जा सके। साल 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में इबोला फैलना शुरू हुआ था। तब से इस साल की शुरुआत तक इस महामारी की वजह से 11,000 लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अमरीकी गठबंधन सेनाओं के हवाई हमलों में 20 आम नागरिक मारे गए हैं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक यह हमला इस्लामिक स्टेट के प्रभाव वाले रक्का के उत्तर में स्थित एक गांव में हुआ। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में। आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। कहीं खुशी तो कहीं गम, ये उद्गार आज अमेरिका की जनता के लिए एकदम सही बैठते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक जीत के जश्न में डूबे हैं, तो हिलरी के समर्थकों में निराशा छाई है। कल जब ये तय हो गया कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, तो उनके समर्थक हर्ष उल्लास से झूम उठे, लेकिन हिलरी के प्रचारकों और समर्थकों में आंसू आ गए। हिलरी क्लिंटन बाद में अपने पति बिल क्लिंटन और बेटी चेल्सी के साथ अपने समर्थकों से रूबरू हुई और डेमोक्रेटिक समर्थकों से माफी मांगते हुए बोली,
दिस इज नॉट द आउटकम वी वांटेड और वी वर्क्ड सो हार्ड फॉर एंड आई एम सॉरी दैट वी डिड नॉट विन दिस।
हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि ये वो परिणाम नहीं है जो हम चाहते थे, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। मुझे खेद है कि हम ये चुनाव नहीं जीत सके, ये बेहद दर्दनाक है। हम जो देश के लिए सोच रखते हैं और हमारे जो मूल्य हैं, उसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा। मैं माफी चाहती हूं कि चुनाव में सफल नहीं हो सकी। हिलरी क्लिंटन के शब्द। अपने समर्थकों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को वो खुले दिल से स्वीकार करें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को खुले दिमाग और दिल से राष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्लिंटन के बाद उनके पक्ष में अभियान चलाने वाले अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उम्मीद जताई कि ट्रंप अमरीका को एकजुट रखेंगे और सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा,
We're not Democrats first, we're not Republicans first, we are Americans first, we're patriots first.
बराक ओबामा कह रहे थे कि ना हम डेमोक्रेट हैं और ना ही रिपब्लिकन, हम पहले अमरीकी हैं, हम देशभक्त पहले हैं। जब मैंने ट्रंप से बात की तो उन्होंने ये सारी बातें मुझसे कही, उनकी ये बातें मेरे दिल को छू गई। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। अब से कुछ देर पहले मैंने वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से पूछा कि ट्रंप की जीत हिलरी की हार के बाद किस तरह का माहौल है देश में और अब आगे क्या।
देखिए, ओबामा और हिलरी, जैसा कि आपने इन बयानों में भी सुनवाया, अपने समर्थकों से और देश से उन्होंने अपील की है कि चुनावी कड़वाहट को पीछे छोड़ एक समन्वय और सामंजस्य के रास्ते पर चलें और नए राष्ट्रपति को नेतृत्व का मौका दें। और आमतौर पर यही प्रथा भी रही है, परंपरा भी रही है कि जो चाहे किसी तरह का मुकाबला रहा हो चुनावी जंग के दौरान, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि नए राष्ट्रपति के साथ एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव है, वो बिल्कुल स्मूथ हो, उसकी कोशिश की जाती है। 8 साल के बाद डेमोक्रेट्स फिर से रिपब्लिकन्स के हाथ में व्हाइट हाउस को की चाबी सौंपेंगे और व्हाइट हाउस के साथ साथ कांग्रेस का जो बहुमत है वो भी रिपब्लिकन के ही हाथों में होगा। तो सबकी नजर इस बात पर होगी कि आते ही ट्रंप इस बात का फायदा उठाते हुए ओबामा के शुरू किए हुए या लागू किए हुए कार्यक्रमों को खत्म करेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया था अपने चुनाव के दौरान, खासतौर से स्वास्थ्य से जुड़े ओबामा केयर, ईरान परमाणु समझौता, जलवायु समझौता और बगैर दस्तावेज के यहाँ बरसों से रहने वाले अप्रवासियों पर जो बातें वो करते रहे हैं, या फिर वो एक सामंजस्य बढ़ाने के लिए पहले उन सब बातों पर काम करेंगे जिस पर दोनों ही पार्टियां एकजुट हैं। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति ओबामा के साथ वाशिंगटन में उनकी मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा एक अजीब सा क्षण होगा क्योंकि दोनों ही ने एक दूसरे पर काफी हमले किए हैं पिछले सालों में। आपको याद होगा ट्रंप ने शुरुआत की थी उस मुहिम की कि ओबामा का जन्म इस देश में हुआ है, वो इस देश के नागरिक भी है या नहीं, और ओबामा ने इस चुनावी अभियान के दौरान काफी कड़े हमले किए। लेकिन राजनीति में इस तरह के क्षण आते रहते हैं और अमेरिका में जब कल की सुबह होगी बृहस्पतिवार को, बहुत लोगों की नजर होगी कि किस तरह से ये दोनों नेता मिलते हैं एक दूसरे से।
ब्रिजेश, अगला कदम अब क्या होगा? 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से होता है और एक तरह से लोगों ने जो वोट दिया है वो वोट इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को चुनने के लिए वोट दिया जाता है और वो लोग फिर 19 दिसंबर को औपचारिक रूप से फिर से दोबारा से ट्रंप के लिए वोट देंगे और फिर 6 जनवरी को उपराष्ट्रपति जो बाइडेन उन परिणामों को खोलेंगे, कांग्रेस का जब नया सत्र शुरू होगा कांग्रेस को उससे अवगत कराएंगे और तब फिर 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम जुटाने की कवायद शुरू करेंगे। टीम चुनने की, कौन चुने जाते हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ, क्या ये वो टीम होगी जो सचमुच मुक्त व्यापार और अमेरिका की मौजूदा विदेश नीतियां उनको आगे बढ़ाएंगे या ये उनके खिलाफ होंगे और एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया इन चीजों को देखेगी, अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका का रुख क्या होगा वगैरह वगैरह, वो सारी बातें उस टीम की तरफ से आएंगी। तो काफी खबरों भरे दिन होंगे आने वाले दिनों में, इसकी पूरी गारंटी है।
ब्रजेश उपाध्याय बता रहे थे कि ट्रंप की जीत के बाद आगे आने वाले दिन कैसे होंगे। हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सिक्का उछलने के बाद चित गिरेगा या फिर पट, बताना मुश्किल होता है। एक खेमा खुश है तो दूसरा दुखी, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें अब ट्रंप के आने वाले दिनों में बनने वाली नीतियों पर होंगी, विशेष रूप से मुसलमानों को लेकर, क्योंकि उनके कई बयानों को कथित तौर पर मुसलमान विरोधी बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अन्य समुदायों की तरह भारतीय मूल के लोग भी बटे हुए हैं। वहां के मुसलमान ट्रंप को लेकर क्या सोचते हैं, सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग तो रवायती तौर पर अधिकतर डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में कई भारतीय मूल के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्थन दिया। न्यूयॉर्क में रहने वाले आनंद आहूजा ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में बनाई गई एक भारतीय मूल की संस्था इंडियन अमेरिकन फॉर ट्रंप के तहत ट्रंप की चुनावी मुहिम में मदद भी की।
डोनाल्ड ट्रंप की जीत बहुत मायने रखती है, चाहे तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को ले लीजिए, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को ले लीजिए, पॉलिटिकल करप्शन है, रिग्ड सिस्टम है, उसको सही करना हो, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अकेला आदमी लड़ रहा था।
डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मध्य हिस्सों में स्थित प्रांतों में खासा समर्थन मिला। पेंसिल्वेनिया, ओहायो, आयोवा जैसी प्रांतों के ये वो इलाके हैं जहां हाल के वर्षों में खासकर स्टील समेत विभिन्न प्लांट और फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, जिसके नतीजे में हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए थे। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भारतीय मूल की प्रोफेसर आनिया लुम्बा को ट्रंप की जीत पर बहुत धक्का लगा है। प्रोफेसर आनिया लुम्बा कहती हैं,
डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे जॉब्स के लिए, या आपको ये देंगे या वो देंगे। सिर्फ नेगेटिव कैंपेनिंग पे ही हैज कम टू पावर। इट इज एक्चुअली शॉकिंग।
वहीं भारतीय मूल की सामाजिक कार्यकर्ता रंजू बत्रा को हिलरी क्लिंटन की पराजय पर अफसोस है।
हाँ, मुझे अफसोस हुआ है क्योंकि मेरे हिसाब से हिलरी को एक्सपीरियंस भी था, सारी दुनिया के हर लीडर से डील कर चुकी हैं और व्हाइट हाउस का सब तरह के एक्सपीरियंस हो चुके थे ऑलरेडी। उनको पता था कि जैसे ही वो प्रेजिडेंट अगर बने उनको क्या करनी है चीजें। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आई होप अब सारी कंट्री को इकट्ठा करें, क्योंकि आधी कंट्री इनमें से जो भी बनता ना, आधी कंट्री उसके अगेंस्ट थी।
अमेरिका में रहने वाले मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कथित मुस्लिम विरोधी बयानों से विचलित हैं। न्यूयॉर्क के ताहिर अहमद ट्रंप की जीत पर खासे परेशान लगे।
हम तो हिलरी के वोट हैं, इस टाइम तो हम टेंशन में ही हैं कि क्या हो रहा है, जो उन्होंने बोला है पीछे, जो स्पीच की है उन्होंने, उनके ऊपर पता चलता है।
ट्रंप ने चुनावी मुहिम के दौरान कहा था कि आतंकवाद को रोकने के लिए मुसलमानों के अमेरिका प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों और उनकी मस्जिदों, इस्लामी केंद्रों की निगरानी करने की भी बात की थी। इन बयानों से मुसलमानों में खासी नाराजगी पाई जाती है और इस चुनाव में अधिकतर मुसलमानों ने लामबंद होकर ट्रंप के खिलाफ वोट डाले। वहीं ट्रंप समर्थक आनंद आहूजा कहते हैं, ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है।
मुसलमानों के कम्युनिटी के तो ना वो अगेंस्ट है, ना कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं हो सकता है। तो वो तो ये एक लिबरल मीडिया ने इसको ट्विस्ट कर दिया, डिफरेंट कलर दे दिया, दैट्स अनदर थिंग। इलेक्शन में होती हैं चीजें, लोग करते हैं।
ब्रुकलिन में रहने वाले राणा अखलाक मानते हैं कि ट्रंप की जीत से मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमानों को खौफजदा होने की जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि इस मुल्क में सदर की एक हैसियत है, लेकिन वो एक हद तक है। वो एक सिस्टम के तहत अपने मामला चलाता है और इस मुल्क में चूंकि मुसलमान या मेक्सिको या दूसरी कम्युनिटी जिनके खिलाफ ट्रंप ने बातें की हैं, मैं नहीं समझता कि वो उससे एज इट इज ही अमल होगा।
बहरहाल अब अमरीका में काम कर रही कई मुस्लिम संस्थाओं ने मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वकीलों की भी टीम मजबूत करनी शुरू कर दी है और तैयारी इस बात की जा रही है कि अगर ट्रंप प्रशासन की ओर से मुसलमानों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया तो उसके लिए अमरीकी संविधान का सहारा लेकर अदालतों में इंसाफ की अपील की जा सके। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
कार्यक्रम में सीधे आपको न्यूयॉर्क ले चलते हैं जहां पर बीबीसी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय इस समय मौजूद हैं। ब्रजेश, आपने बताया फोन करके कि इस समय एक बड़ी रैली निकल रही है, आंखों देखा हाल बयां कीजिए, क्या चीज है ये?
हजारों लोग या हजारों नौजवान मोहनलाल एकदम किसी के कहने पर, मुझे नहीं लग रहा है, खुद ब खुद निकल आए हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर, बैनर्स लेकर, नारे लेकर के कि नॉट माय प्रेसिडेंट के नारे लगा रहे हैं कि ट्रंप हमारे राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको इन नारों की आवाज सुनाई देती है या नहीं।
बहुत ही हल्की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ये आवाज आ रही है और ये नारे आ रहे हैं। जी
हाँ जी, तो और काफी मतलब कि लोग यहाँ पर मतलब कि जो खासे गुस्से का इजहार कर रहे हैं या फिर नारेबाजी कर रहे हैं ये नौजवान, कुछ लोग गाड़ियों के हॉर्न बजाकर उनके साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खबर ये भी आ रही कि ओरेगॉन और कैलिफोर्निया में भी कुछ इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस स्केल का नहीं। मैं पिछले 45 मिनट से लगभग इन लोगों के बगल में ही चलता जा रहा हूं और ये भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और खास तौर से उसमें ये भी नारे लगे हुए हैं कि जो पॉपुलर वोट है, यानी कुल वोटों की जो तादाद है, वो हिलरी क्लिंटन को ज्यादा मिली है, और उस बात के भी नारे लग रहे हैं। तो एक 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 अलग तरह का आप कह सकते हैं कि जो गुस्सा है, खासकर न्यूयॉर्क जो काफी लिबरल शहर माना जाता है, तो वहाँ जो ट्रंप की जो बातें हुई हैं उनके खिलाफ बहुत एक तरह का गुस्से का इजहार किया जा रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय न्यूयॉर्क से सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इस समय न्यूयॉर्क में ट्रंप के विरोध में एक रैली निकल रही है और जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपति ट्रंप नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर रूस और चीन ने उन्हें बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि अमेरिका के साथ ट्रंप के नेतृत्व में उनके संबंध और बेहतर होंगे। वहीं ईरान के लोग ट्रंप की जीत से कतई उत्साहित नहीं हैं और मानते हैं कि हिलरी ट्रंप की तुलना में अमेरिका ईरान संबंधों के लिए बेहतर होती। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के बाद दिए भाषण में साफ कर दिया कि सभी देशों से वो अमरीका के संबंध बेहतर करने पर जोर देंगे, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता होगी अमरीकी हितों को ऊपर रखना। लेकिन रूस और चीन जैसे देशों ने ट्रंप के साथ बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई। मॉस्को में बोलते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को जीत की बधाई दी और कहा कि वो रूस अमेरिका के नए नेता के साथ दोनों देशों के संबंध बेहतर करने पर जोर देगा। पुतिन ने कहा,
Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами.
रूस तैयार है, हम अमेरिका के साथ पूरी तरह से दोस्ती वाले संबंध बहाल करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन रूस इसके लिए अपनी भूमिका निभाने को पूरी तरह से तैयार है ताकि दोनों देश मिलकर विकास की नई इबारत लिख सकें। हम ऐसे संबंध चाहते हैं जिससे रूस और अमरीका दोनों ही देशों के नागरिकों का भला हो। रूस और अमेरिका के संबंध ऐसे हों जिनका दुनिया भर के माहौल पर सकारात्मक असर पड़े। ये थे ट्रंप को बधाई देते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चीन ने भी भरोसा जताया कि ट्रंप अमरीकी चीन संबंधों को नए स्तर पर ले जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कैंग लू ने कहा कि चीन डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोनों देशों की बेहतरी के लिए काम करने का इच्छुक है। कैंग लू ने कहा, हम अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंध को मजबूती देने की दिशा में काम करने को तैयार हैं, जो दोनों देशों के हित में होगा। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कैंग लू के शब्द। वहीं ईरान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर माहौल बिल्कुल जुदा है। ट्रंप की जीत पर ईरान के निवासियों की प्रतिक्रिया कुछ यूं रही, उनके विचार ईरान को लेकर बेहद नकारात्मक और अतिवाद से भरे हैं। हिलेरी क्लिंटन की सोच उनसे अलग थी। मुझे लगता है कि ट्रंप की जीत परमाणु समझौते पर विपरीत असर डालेगी। ट्रंप ईरान अमेरिका परमाणु समझौते का विरोध करते रहे हैं, वो इसे ख़त्म करना चाहेंगे। उनका चुना जाना हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिक्रिया देते ईरान के लोग। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार अभियान में ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते पर कई बार आशंका जता चुके थे। साथ ही मुसलमानों को लेकर दिए गए उनके बयानों का भी ईरान में खासा विरोध होता रहा है।
ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर विदेशों की क्या प्रतिक्रिया है, ये प्रभात पांडे सुना रहे थे। और अब हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से वरिष्ठ पत्रकार एहतिशाम उल हक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एहतिशाम, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूमिका संबंधों में मानी जाती है अमरीका के लिहाज से। कुल मिलाकर इस समय पाकिस्तान के अखबार क्या कह रहे हैं?
लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े सारे अखबार मेरे सामने पड़े हैं और बैनर हेडलाइन के साथ जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बारे में बताया गया है। मसलन डॉन अखबार अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है, वो लिखता है, ट्रंप ट्रैफ जॉल्ट यूएस बफल्स वर्ल्ड एन इलेक्शन नाइट लाइकली नो अदर। फिर इन्होंने डॉन ने यह एडिटोरियल लिखा है ट्रंप विक्ट्री के नाम पे। फिर जंग अखबार है जी उर्दू का सबसे बड़ा, ये लिखता है कि सबका सदर हूँ, ट्रंप का अपसेट, वादा करता हूँ कि अवाम को मायूस नहीं करूंगा, रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर खिदमत करूंगा। इसी तरह से इस्लामाबाद से एक अंग्रेजी अखबार है, इसकी बैनर हेडलाइन ट्रंप्स अचीव स्टनिंग विक्ट्री। साथ ही एक आर्टिकल है जाउद्दीन साहब का, ट्रंप्स बेनिफिट फॉर पाकिस्तान। फिर एक और उर्दू का अखबार है जी दुनिया, ये लिख रहा है जी सियासी तारीख का सबसे बड़ा अपसेट, ट्रंप अमरीकी सदर मुंतखब, दुनिया हिल गई, हेली रो पड़ी। इस तरह से जी खबरें हैं सवाल से। अब अमरीकी सफीर का बयान छपा हुआ है पाकिस्तान में, जो है ट्रंप के जीतने से पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी तब्दील नहीं हो। और इसी तरह से वजीर खजाना डार साहब का बयान है कि نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. نواز شریف صاحب کا بیان چھپا ہوا ہے, پرائم منسٹر جو ہیں ان کا خیال ہے کہ 70 سال سے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد.
پاکستان کی راجنیتی میں کیا ٹرمپ کو سکاراتمک دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں جی, یہ مکس ریئیکشن آ رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہلری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, ان کی پالیسیز بڑی واضح تھی, پاکستان کے بارے میں رویہ ان کا وہی رہنا تھا. جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ساری دنیا میں, کیونکہ ٹرمپ کا آنا جو ہے نا سب کے لیے نقصان دہ ہوگا, اسٹاک مارکیٹ ساری دنیا کی نیچے گئی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے وعدہ کیا ایک تقریر میں, پوری کمپین میں ایک دفعہ پاکستان کا نام آیا, وہ بھی اس حوالے سے کہ میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں ٹھیک کرنے کے لیے میں میڈیٹر کا رول ادا کر سکتا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بزنس مین ہے, پیسہ اپنا لگائیں گے. دنیا کا جو ہے نا $10 بلین جو ہر سال ابھی بھی جا رہا ہے افغانستان میں روک کے اپنے ملک میں لگائیں گے, اور وہ برابری کی بنیاد پہ کوشش کریں گے کہ وہ اکانومی پہ فوکس کریں. تو اس لحاظ سے لوگ اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں.
احتشام الحق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کارکرم میں اسلام آباد سے شامل ہونے کے لیے. پربھات پانڈے موجود ہیں. پربھات پانڈے, ہندوستان کے اخباروں کی بھی سب سے بڑی سرخی مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہی دکھ رہی ہے.
جی موہن لال جی, سارے اخبار ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت, اور اس کے علاوہ 500 اور 1000 روپے کے نوٹ جو پرانے نوٹ بند ہونے کا اعلان ہے, صرف یہ دو خبریں ہی. میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی تیسری خبر پہ نظر پڑ جائے, لیکن سارے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ یہی خبر چھپی ہوئی ہے. ٹائمس آف انڈیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت, وہ اپنے پریوار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, ایسی تصویر چھپی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو 500 اور 1000 روپے کے نوٹ بند کرنے کا اعلان ہوا, اس کے آفٹر ایفیکٹ والی خبر ہے. ہیڈ لائن دی ہے, لیٹ نائٹ سیلز گولڈ فار 50,000 روپیز پر 10 گرام. یعنی کہ دیش کے کئی حصوں میں, پشچمی اتر پردیش, میرٹھ, آگرہ, دہرادون جیسے شہروں میں ایسی خبریں ہیں کہ لوگ اپنے پاس جمع رقم کو سونے میں تبدیل کرانے, سونے خریدنے کے لیے دوڑ پڑے, اور کئی جگہوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سونا 50,000 روپے پرتی تولے تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمس میں بھی خبر ہے کہ 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ مولیہ کے اگر نوٹ آپ جو ہے وہ بینک میں ایکسچینج کرانے جاتے ہیں تو انکم ٹیکس کی آپ پر نظر ہوگی, اور اگر آپ کی گھوشت سمپتی سے زیادہ رقم وہ نکلی تو اس پر ٹیکس کے ساتھ ساتھ 200% کا جرمانہ بھی دینا پڑے گا. یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے. نو بھارت ٹائمز نے خبر امریکی چناؤ سے ریلیٹڈ چھاپی ہے, جس میں
اس کی ہیڈ لائن مجھے کافی پسند آ رہی, امریکیوں نے چلا ٹرمپ کارڈ.
جی امریکیوں نے چلا ٹرمپ کارڈ, یہ ہیڈ لائن دی ہوئی ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بارے میں لکھا ہے, چونکانے والے نتیجوں میں ڈونلڈ ٹرمپ بنے یو ایس کے بگ باس, ساتھ ہی بھارتیہ مول کی اٹارنی جنرل رہی کملا ہیرس کی امریکی سینیٹ میں جیت کو بھی پرمکھتہ دی ہے. جی مولا جی,
بہت بہت شکریہ. اور یہیں پر ہم اپنے شروتاؤں کو بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریوار میں کون کون ہے, کتنے سدسیہ ہیں. یدی آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو bbchindi.com کی اس سمے شیرش خبر یہی ہے.
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल.
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत, और जैसा कि आपने समाचारों की समीक्षा में सुना, भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट के चलन से हटने के बाद आज बैंक ग्राहकों के लिए पहली बार खुलेंगे. منگلوار کو پردھانمنتری کی گھوشنا کے بعد مدھیہ رات سے نوٹوں پر روک لگنے کے بعد سے ہی لوگوں کو اسویدھا ہو رہی تھی. کانگریس نے کئی سوال اٹھائے. کل وت منتری ارون جیٹلی نے کہا کہ لوگوں کو تھوڑی اسویدھا ہو سکتی ہے, لیکن یہ دیش کو کیش لیس اکنامی کی طرف لے جانے والا ہے. ایک رپورٹ سنیے واتسل رائے سے.
500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کے بند ہونے کے بعد سامنے آئی ملی جلی پرتکریاؤں کے بیچ سرکار نے اپنے اس قدم کو بے حد پربھاوی بتایا ہے. وت منتری ارون جیٹلی نے کل کہا کہ لوگوں کو اس فیصلے سے تھوڑی اسویدھا ہو سکتی ہے, لیکن ادھکتر لوگوں نے سرکار کے قدم کا سواگت کیا ہے.
اس میں سرکار کا سپشٹ ماننا یہ ہے کہ اس نرنے کا پورے سماج میں بڑی درشٹی سے سواگت ہوا ہے. یہ ایک بہت پربھاوی قدم ہے اس دیش کو کیش لیس اکانومی کی دشا میں لے جانے کے لیے.
سرکار کے اعلان کے مطابق آج سے دیش بھر کے بینکوں میں 500 اور 1000 روپے کے پرچلن سے باہر ہوئے نوٹوں کو جمع کرنے کا کام شروع ہوگا. آج سے 30 دسمبر تک لوگ بینک اور پوسٹ آفس کے کھاتے میں پرانے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ جمع کرا سکیں گے, لیکن ایک دن میں 10,000 روپے سے زیادہ کی نکاسی نہیں ہو سکے گی. ہفتے بھر کے اندر ادھکتم 20,000 روپے نکالے جا سکیں گے, بعد میں یہ سیما بڑھائی جائے گی. एटीएम से हर दिन 2000 रुपए निकाले जा सकेंगे। हालांकि राजस्व सचिव ने जानकारी दी है कि अगर 30 दिसंबर तक कोई अपने खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करता है तो इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। खाते में जमा की जाने वाली रकम का मेल अगर पहले से घोषित आमदनी से नहीं हुआ तो टैक्स के अलावा 200% की दर से जुर्माना भी लगाया जाएगा। उधर कांग्रेस ने सरकार के 2000 रुपए के नोट लाने के फैसले पर सवाल उठाया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कल इसे एक पहेली बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि नोट बदलने के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
500 रुपी नोट मस्ट बी रिप्लेस्ड विदाउट हैरेसमेंट। द टेस्ट विल बी बिगिनिंग टुमारो हाउ एफिशिएंटली एंड हाउ क्विकली दैट मनी इज बीइंग रिप्लेस्ड।
उधर बैंक की यूनियनों ने बैंकों में कामकाज का बोझ बढ़ने का मुद्दा इंडियन बैंक एसोसिएशन के सामने उठाया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकट चलम ने BBC को बताया,
ना हम बोल दिया थोड़ा ज्यादा करेंगे पब्लिक के लिए, लेकिन हमको ओवर टाइम पेमेंट करना है और लैंड ऑर्डर के लिए सिक्योरिटी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, फेक नोट डिटेक्ट करने का पूरा और ज्यादा मशीन चाहिए।
इस बीच नेपाल के केंद्रीय बैंक ने देश के बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों में 500 रुपए और 1000 रुपए की भारतीय मुद्रा के लेन देन पर रोक लगा दी है।
आज भारत की सबसे बड़ी खबर यही होने वाली है, जब बैंक आज सवेरे खुलेंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि कितनी भीड़ नोटों को बदलने के लिए बैंकों के पास पहुंचती है। सबकी नजर इस खबर पर रहेगी। कार्यक्रम में अब वक्त है खेल की खबरें सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से 5 टेस्ट मैचों के क्रिकेट सीरीज का पहला मैच राजकोट में शुरू हुआ, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय 4 विकेट खोकर 311 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टेयर कुक ने पहले विकेट के लिए हसीब हमीद के साथ 47 रनों की साझेदारी की। एलिस्टेयर कुक रविंद्र जडेजा की गेंद पर 21 रन बनाकर LBW आउट हुए। हालांकि रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पिच होकर लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, लेकिन कुछ भी हो भारत ने राहत की सांस ली। दूसरा शिकार हमीद बने, पर इस बार विकेट आर अश्विन को मिला। अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे हमीद 31 रन बनाकर LBW आउट हुए। इसके बाद बेन डुकेट आर अश्विन की गेंद पर अजिंक्य रहाणे को कैच दे बैठे, उन्होंने 13 रन बनाए। इससे पहले उन्होंने 3 बेहतरीन चौके लगाकर भारतीय खेमे में कुछ दहशत पैदा की, लेकिन भारतीय टीम के लिए असली समस्या तब पैदा हुई जब जो रूट और मोइन अली पिच पर खूंटा गाड़कर जम गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 179 रनों की साझेदारी की। रूट ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जमाते हुए 124 रन बनाए। उन्होंने 180 गेंदों का सामना किया और 11 चौके और 1 छक्का लगाया। रूट उमेश यादव के हाथों उन्हीं की गेंद पर कैच हुए। कल स्टंप के समय मोइन अली 99 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका साथ दे रहे थे बेन स्टोक्स, जो 19 रन बना चुके हैं। भारत के लिए समस्या अब ये है कि उसके तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नहीं है। उनके फिटनेस को लेकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कोच रहे मदन लाल कहते हैं,
शमी जो है उन्होंने 1 या 2 साल वेट भी किया है। जब वो इंजर्ड हो गए थे, जब उनकी नी का ऑपरेशन हुआ था, तब भी उनको रेस्ट कराया गया था, उसके बाद उनको लेकर आए हैं। पर ऐसी चीजें छुपाने से टीम का नुकसान होता है। अगर उन्होंने छुपाई है तो गलत बात है, अगर नहीं छुपाई तो मैच में ऐसा होता है क्रैम्प आ जाते, शायद शाम तक भी हो सकता। सुबह अगर हम देखेंगे वो बॉलिंग करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की टीम के लिए थोड़ा सा झटका होगा, क्योंकि नया गेंद आने वाला है।
उधर हरारे में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के चौथे दिन स्टंप के समय जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट 180 रन पर खो दिए थे। जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 491 रनों का लक्ष्य है, यानी उस पर हार का खतरा निश्चित रूप से मंडरा रहा है।
और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के हित सबसे ऊपर रखना उनकी प्राथमिकता होगी, लेकिन साथ ही सभी देशों से संबंध बेहतर करने पर भी उनका जोर होगा। वहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उम्मीद जताई कि ट्रंप अपने नेतृत्व से अमेरिका को एकजुट रखेंगे। चिकित्सा अधिकारियों ने आगाह किया है कि पश्चिमी अफ्रीका में एक बार फिर से इबोला फैल सकता है। सीरिया में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अमरीकी गठबंधन सेनाओं के हवाई हमलों में 20 नागरिक मारे गए। दक्षिणी लंदन में एक ट्राम के पलट जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। घंटे भर बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।